देखने से मान नष्ट नहीं होता और रत्नों के देखने से मान नष्ट नहीं होता, पर इस मानस्थम को देखने से मान अगर नष्ट होता है तो उसमें क्या महत्ता है। प्रत्यासत्तिर यदि न भवता तस्य तस् शक्ति हेतु, मानस्तंभ में मनुष्यों के मान कषाय को नष्ट करने की सामर्थ्य आ ही नहीं सकती अगर उसमें आप न विराजे हो। अगर आपकी निकटता ना हो तो हमारी मान कषाय नष्ट नहीं हो सकती। भगवान से जितनी निकटता होगी उतनी कषायें नष्ट होंगी, और जितनी कषायें नष्ट होंगी भगवान के हम उतने ही निकट हो जाएंगे। निकट क्या हो जाएंगे, हम कषाय के अभाव में स्वयं भगवत्ता को प्राप्त कर लेंगे। भक्ति इतना बड़ा काम करती है। धीरे धीरे भगवान की भक्ति में उनके गुणगान करके हम उनसे निकटता प्राप्त करते हैं, और जैसे जैसे उनके प्रति निकटता आती है वैसे वैसे हमारी कषायें हमसे दूर होना शुरू होती हैं, और कषायों का अभाव होने पर हम उस भक्ति का प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति का प्रसाद अगर कोई है तो यही है कि हम स्वयं भगवान बन गए। भक्ति करने के बाद में प्रसाद बांटा जाता है, वो बहुत बाहरी प्रक्रिया है। अंतरंग में प्रसाद तो यह है कि मेरी कषायें नष्ट हो गई तो मेरे भीतर प्रसन्नता आ गई, वो ही प्रसाद। क्या ऐसा हम भक्ति करके प्रसाद पाकर लौटते हैं क्या? क्या हम अपनी कषायों को कम करके लौटते हैं? क्या हम भगवान से अपनी निकटता महसूस करते हुए भक्ति करके लौटते हैं, या भक्ति करने के क्षणों में हम ऐसी ही कषाय की मंदता और भगवान से निकटता महसूस करते हैं? नहीं, हम तो यहाँ पर संसार में किसी से छोटे होना पसंद नहीं करते। हमारे भीतर की मान कषाय हमें प्रेरित करती है, कह रहे तुम कैसे पीछे रह गए, तुम कैसे छोटे होके रह गए, दौड़ो तुम भी आगे निकल जाओ, और अगर ऊंचे नहीं हो पाओ तो नीच नीच दूसरे को गिरा करके ऊंचे हो जाओ। हमारी कषायें तो हमें ऐसा करने के लिए संसार में प्रेरित करती
है। उन कषायों को जीतने का सबसे आसान उपाय है भगवान के गुणगान में लीन होना, भगवान की वीतरागता को अपने भीतर प्रकट करने के लिए प्रयत्न करना। एक बिल्ली बहुत दुखी थी। किस बात से दुखी थी? उसको कुत्ते का बहुत डर लगता था, तो उसने एक जादूगर का जादू देखा। वो जादूगर किसी को कुछ भी बना देता था, तो बिल्ली ने भी उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई थोड़ी मेरे ऊपर भी दया करो, मुझे भी थोड़ा बड़ा बना दो। तो कितना बड़ा बना दो? ये कुत्ता मेरे से बड़ा है, मुझे परेशान करता है, मुझे उसका बड़ा डर लगता है। तो उसने कहा ठीक। तो बिल्ली की पर्याय बदल गई, उसको कुत्ते की पर्याय मिल गई। लेकिन कुत्ते की पर्याय मिलने के बाद में एक नई समस्या शुरू हो गई। वो जंगल में शेर, चीता, ये भालू, अब ये इतने सारे लोग, इनसे डर लगने लगा। उसने फिर से जादूगर से कहा कि इनमें से कोई,
ये तो आपने बहुत कृपा करी, इनमें से कोई बना दो थोड़ा और बड़ा। तो शेर बना दिया, भालू भी बना के देख लिया, चीता बना के देख लिया, लेकिन सबको फिर एक डर कि शिकारी ना आ जाए। तो जादूगर ने कहा कि तुम तो जो हो वो ही रहो, अकेले पर्याय बदलने से नहीं होगा, भीतर तो चेतना वो ही है जिसके भीतर भय है। ऐसा करो कि भीतर का भय निकल जाए तो कोई भी पर्याय में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, और भीतर का भय निकल जावे तो एक ही पर्याय है, सिद्ध पर्याय, और संसार की कोई पर्याय नहीं मिलेगी। वो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान हमें संसार के किसी पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर वास्तव में अपने आप में प्रतिष्ठित होना है, अगर वास्तव में कोई सम्मानजनक जीवन जीना है,
तो इन सब कषायों से मुक्त होकर के उस वीतराग स्वरूप को प्राप्त करो जहाँ कोई भय नहीं है, जहाँ कोई आसक्ति नहीं है, जहाँ कोई अज्ञान नहीं है। शायद यही प्रेरणा तो हमें भगवान की भक्ति से लेनी चाहिए। बादीराज महाराज के भक्ति करने का ढंग बिल्कुल अलहदा है। भगवान से कहीं कोई याचना नहीं है, कहीं कोई उनसे अपेक्षा नहीं है, सिर्फ भक्ति का आनंद लेने का जरूर भाव है। और वास्तव में भक्ति वही सार्थक है जिसमें हम भक्ति के क्षणों में और भगवत्ता का अनुभव करते हैं, अपनी कषायें और आसक्ति और अज्ञान छोड़ करके अत्यंत प्रसन्न भाव से भक्ति करके और आनंदित होते हैं। आगे बाजीराज महाराज कह रहे हैं कि अकेले मान कषाय का ही नहीं, समस्त कषायों का ये भक्ति हमसे दूर करने में कारण बनती है। हृदय प्राप्तो मरुदपिभवन मूर्ति शैलोपवाही सद्यः पुंसाम निर्वधि तुजा धूलिबंधम धनोति ध्यानाहूतो हृदय कमलम यत्तु तुम प्रविष्ट तस्या सत्या कई विभिन्न देव लोकोपकार। हे भगवान, आपके पर्वत के समान उत्तुंग ऊंचे देह से जो हवाएं स्पर्श करके गुजरती हैं, वे हवाएं दूर दूर तक जहां जिसके समीप पहुंचती हैं उसका स्पर्श करके उसे समस्त रोगों से मुक्त कर देती। रोग रूपी धूल को वे उड़ा के ले जाती, जैसे कि
हवाएं जो बहुत तेज तेज पर्वत से टकरा करके चलती हैं वे कितनी धूल को उड़ा करके ले जाती हैं। ऐसे ही आपके पर्वत के समान उत्तुंग ऊंची देह से जो हवाएं टकरा करके जाती हैं वे लोगों के रोग रूपी धूल को नष्ट कर देते हैं। बड़े से बड़ा रोग कौन सा है भैया? कषाय से बड़ा कोई रोग है क्या? और कषाय में भी लोभ से बड़ा कोई रोग है क्या? सारे रोग उसी एक लोभ से उत्पन्न होते हैं। जितने भी मानसिक रोग हैं, शरीर में भी अगर कोई रोग होता है तो हमारे पूर्व संचित उन्हीं कर्मों की वजह से होता है, और वे कर्म हमारी कषायों से ही हमने संचित किए हैं, अपनी अज्ञानतावश हमने होते हैं। उन सब संचित कर्मों की धूली को भी कब नष्ट होती है? ध्याना हो तो हृदय कमलम यस्तु तुम प्रविष्ट। जिसने ध्यान के माध्यम से हे भगवान भक्ति के क्षणों में आपको अपने हृदय में बिठा लिया है, अकेले आपके शरीर से छूकर के जाने वाली हवा इतना काम कर सकती है, तो कोई अगर अपने हृदय में आपको बिठा लेवे तब तो उसके द्वारा कह लोगों को उपकार है ना सक्या। कौन ऐसा लोभ का उपकार है जो उससे ना हो सके? दो चीजें आवश्यक हैं, एक ध्यान के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से भगवान को भक्ति के क्षणों में अपने हृदय में बिठाना, और दूसरा हृदय को लोभ से रहित करना। जितना निर्लोभ होगा व्यक्ति उतना ही उपकारी होगा। लोभी व्यक्ति दूसरे पर उपकार नहीं कर सकता। देख लो आप, अपने भीतर लोभ जागृत हो जावे तो एक जरा सी चीज दूसरे को देने में 10 दफे सोचना पड़ता, दूसरे का उपकार करने में। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर आपको अपने हृदय में कोई एकाग्र होकर के और बिठा लेवे तो उसके द्वारा संसार का कल्याण ही होगा, क्योंकि वो स्वयं ही इतना निर्लोभी हो जाएगा कि संसार की आसक्तियां उसे नहीं घेरेंगी, और वो अपनी आसक्तियों से बच करके संसार का और अपना स्वयं का भी कल्याण कर ले। एकाग्रता नहीं सद पाती, कौन आया कौन गया, किसने पूजा में चावल चढ़ाए, ठीक से पूजा करी या नहीं करी, किससे भक्ति अच्छे से बन रही है कि नहीं बन रही, कौन प्लेट बजा के भक्ति कर रहा है, कौन पैर हिला के भक्ति कर रहा है, सब देखने में आता है। हम कैसे कर रहे हैं ये भर नहीं देखने में आता। हमने कैसे एकाग्रता से भक्ति करी ये हमें ध्यान नहीं रहता, बाकी सब क्या चल रहा है कहां वो ध्यान रखता। भक्ति के क्षणों में भी अपन इतना चूक जाते हैं, अपनी एकाग्रता नहीं रह पाती, और इसी वजह से उस एकाग्रता के अभाव में और हमारे भीतर वह वीतराग भाव जो भगवान ने प्राप्त किया है वो नहीं आ पाता, और हमारी भक्ति इसलिए अधूरी रह जाती। एक मां का बेटा खो गया, ढूंढ रही है, जहां जो बताता है वहां भागती है, भागते भागते अचानक कोई उसे जोर से डांट करके बोलता है कि दिखता नहीं है क्या तेरे को, तो थोड़ी चौंक जाती है, क्या हुआ मेरे से। हुआ ये था कि शाम का समय था, कोई पुजारी जी होंगे भगवान के भक्त, तब शाम का समय हो गया है तो उन्होंने अपनी चादर वादर बिछाई, उसी पे बैठ करके भगवान की भक्ति शुरू की होगी, और अब इस माँ को नहीं दिखाई दिया तो उस चादर पर पैर पड़ गया तो वो बौखलाए। हालांकि कर रहे थे वो भगवान की भक्ति, पर फिर भी बौखलाए, हो जाता है ऐसे कोई बौखलाए कि तेरे को दिखता नहीं है मेरे चादर पर तूने पैर रख दिया, जो इतनी पवित्र भगवान की भक्ति का स्थान था ये। तो उस मां ने कहा कि सचमुच मुझे अभी कुछ नहीं दिखता, मुझे सिर्फ अपना खोया हुआ बेटा दिख रहा है, पर मुझे आश्चर्य है कि आप तो भगवान की आराधना कर रहे थे, आपको भगवान के अलावा मैं कैसे दिखाई पड़ गई, मेरा पैर उस पर पड़ा, ये कैसे दिखाई पड़ेगा बताइए। अपनी एकाग्रता ऐसी क्यों नहीं हो पाती संसार के कार्यों में, कितनी एकाग्रता अपनी बन जाती है। काश अपना संस्कार अपन इतना प्रबल कर लें, और कोई बात नहीं है, संस्कार नहीं होने की वजह से, संस्कार जिस चीज का होता है उसमें उतनी जल्दी एकाग्रता बनती है। अपन भी भगवान की भक्ति का संस्कार इतना प्रबल बनाएं कि हमारी भी क्षण भर में ही ऐसी एकाग्रता सध जाए कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे हम उन सब से थोड़ी देर को सही बेखबर हो जाएं और फिर भगवान के ध्यान में लीन हो जाएं, तब फिर जरूर से हमारे कर्म हटेंगे, हमारा लोभ घटेगा, संसार से आसक्ति घटेगी, वही भक्ति हमारे जीवन में, हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाली है, जिस भक्ति में हम अपना लोभ घटाते हैं, अपनी अज्ञानता घटाते हैं और भगवान के निकट आते हैं। बादीराज महाराज की इस भक्ति की भावना से हम भी प्रेरणा दे करके अपने जीवन में ऐसी भक्ति को प्रवेश दें जिससे कुछ नहीं बनता भैया, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिससे चार लाइनें बांधते नहीं बनती शास्त्र की, वो भी कर सकता है, जिसके पास बहुत सारी डिग्री नहीं है, जिसके पास धन पैसा नहीं है, वो भी कर सकता है। यहाँ इस भक्ति में किसी इन बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं, पूजा की थाली आपने कितनी बढ़िया सजाई है या कि आपके पास द्रव्य ही नहीं है चढ़ाने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण तो वहां पर यह है कि मैं कितना उस वीतराग भाव के प्रति एकाग्र हुआ हूं और मेरी राग द्वेष से कितनी निर्लिप्तता हुई है, कितनी मेरी वृत्ति में निर्लोभपना आया है, कितना मेरा मान कषाय घटी है, ये जो है वो भक्ति की उपलब्धि है। ऐसी ही भक्ति अपन को करनी चाहिए। लोभ के बारे में तो जगत प्रसिद्ध हैं बहुत सारी घटनाएं, अपन भी एक घटना याद कर लेते हैं कि कम से कम ऐसा वाला लोभ सा ना हो, थोड़ा बहुत तो चलेगा, थोड़ा लोभ तो नहीं तो वैसे कैसे का, और संसार में एकदम थोड़ी निकल जाएंगे एक व्यक्ति में, थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही उसी में उलझे रहें और जरा भी भगवान की भक्ति के लिए, अपने कल्याण की बात के लिए जरा भी समय ना मिले, दूसरे के उपकार के लिए भी अपना मन ना बने, इतना लोभ तो, इतना लोभी तो नहीं होना चाहिए। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, तो परेशान बहुत था वो अपनी आर्थिक स्थिति से, तो राजा को उस पर दया आ गई
तो राजा ने कहा भाई ऐसा कर, थोड़ा परिश्रम तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिन भर में सुबेरे से शाम तक मेरे खजाने से जितना धन पैसा सोना चांदी ढो सको तो ढो लो। अरे इसमें क्या परिश्रम? उसने कहा ये तो बहुत आसान सा काम है। घर में आकर के उसने और सबको कहा, सब बड़े खुश हुए। अब खुश तो हुए लेकिन उस खुशी में भूल गए। क्या भूल गए? कि जल्दी से जाओ ले आओ। नहीं नहीं, इतनी बड़ी चीज दिन भर में अपन कितना सारा ढो लेंगे। अब घेर लिया लोभ ने, बहुत सारा ढो लेंगे अब काय को जल्दी। अभी तो तीन चार दिन से भोजन नहीं किया है तो उधार खरीद के लाओ, सब चुकता कर देंगे बाद में।
तो खूब बढ़िया बढ़िया चीजें ला करके भोजन किया। अब भोजन की तासीर तो ये है कि आपने किया है भोजन तो विश्राम भी करो, है ना। तो जनाब सो गए। अब सो गए तो फिर दोपहर में नींद खुली, फिर भी उनने कहा अभी बहुत गुंजाइश है, सूर्यास्त होने में बहुत समय है और मुझे करना क्या है, जल्दी जल्दी जो है खजाने से निकाल के ले आऊंगा, घंटे भर में तो बहुत सारा ले आऊंगा मैं। चले जनाब, अब रस्ते में चले जा रहे, अब मोटर गाड़ी में बैठ के भी नहीं जाएंगे, पैदल पैदल चलो, काहे को पैसा खर्च करो। हाँ तो रस्ते में देखा कि कोई खेल तमाशा दिखाने वाला खेल तमाशा दिखा रहा और बड़ा इंटरेस्टिंग, तो खड़े हो गए कैसा चल रहा है। अब इतना बढ़िया लगा उनको कि उसी को देखते रहे, और जब वो खेल खत्म हुआ तो इनका भी खेल खत्म हो गया क्योंकि सूर्यास्त हो गया। अब जब ये पहुंचे वहां पर तो उन्होंने कहा कि वो तो सूर्य उदय से सूर्यास्त तक की बात थी, और हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं आया। हमारे अपने जीवन में क्या होता? हमारे जीवन में भी लोभ के चलते आखिरी जाते समय हमारे हाथ खाली ही रह जाते। मिला तो था कि पूरे जीवन में जितना निकाल सको अपने जीवन से खजाने से उतना प्राप्त कर लो। खजाना तो हमें हमारे हाथ में दे दिया गया था, बता भी दिया गया था कि हमारी भीतरागता हमारे भीतर है, हमारा खजाना हमारे भीतर है, जितना निकाल सको। तो हमने सोचा कि भीतरागता में क्या देर लगनी, अभी छोड़ता हूँ राग द्वेष, अभी छोड़ता हूँ मुंह और फिर अपने स्वरूप में बैठ जाऊंगा। नहीं, पूरा जीवन निकल जाता राग द्वेष छूट नहीं पाता। आज थोड़ा ही तो किया है, कल और थोड़ा कम कर लूंगा, धीरे धीरे कर लूंगा। नहीं, पूरा जीवन निकल जाता उसी राग द्वेष और मोह में। हम जरा एक रत्ती भी नहीं कर पाते हैं कम, बाहर से भले ही बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन भीतर की कषायें और अज्ञान को कम करने का उपक्रम हमारा नहीं हो पाता और पूरा जीवन निकल जाता है। और हमारी अपनी संपदा जो हमारे भीतर हम लेकर के आए हैं उससे हम वंचित रह जाते हैं। हम कोशिश करें कि अपनी इन कषायों को थोड़ा सा कमती करें और भगवान के प्रति निकटता का एहसास करें तो हमारी ये भक्ति भी हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकती है। इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने, बोले आचार्य विवर विद्यासागर मुनि महाराज।
गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, अर्घ्य निषाता सन्नाता वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप सन दीपक पर पर पल वर्षाती घड़ियां करते सुख दुख दानों की।
चरणारविंदों को अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्य निरपामी।